खबरों से भरे न्यूज 18 हिंदी के पॉडकास्ट में अनुराग अन्वेषी आपका स्वागत करता है। नमस्कार दोस्तों, भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ मनाने के लिए कार्यक्रमों की श्रृंखला आज़ादी का अमृत महोत्सव का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज करेंगे। इसी के तहत दिल्ली की केजरीवाल सरकार भी आज इस कार्यक्रम की शुरुआत करने जा रही है। आज के पॉडकास्ट में पश्चिम बंगाल और असम विधानसभा चुनाव से जुड़ी खबरें भी होंगी, लेकिन पहली खबर है महाराष्ट्र से, जहां कोरोना संक्रमण की रफ्तार ने एक बार फिर जोर पकड़ लिया है। देश में कोरोना महामारी से सबसे ज्यादा प्रभावित रहे महाराष्ट्र में गुरुवार को कोरोना के रिकॉर्ड 14,317 नए मामले सामने आए। वहीं राजधानी मुंबई में यह आंकड़ा 1,500 पार कर गया। इस स्थिति को देखते हुए सीएम उद्धव ठाकरे ने कहा है कि वह अगले 2-3 दिनों में राज्य के कुछ इलाकों में लॉकडाउन लगाने पर फैसला कर सकते हैं। इस बीच औरंगाबाद में रात 9 बजे से सुबह 7 बजे तक लिमिटेड लॉकडाउन की घोषणा की गई है। इसके साथ ही शनिवार और रविवार को पूरा लॉकडाउन रहेगा। वहीं नागपुर में 15 मार्च से 21 मार्च तक पूर्ण लॉकडाउन की घोषणा कर दी गई है। केवल आवश्यक सेवाओं को ही अनुमति दी गई है। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए फिलहाल महाराष्ट्र में वैक्सीनेशन की रफ्तार तेज कर दी गई है। क्वाड देशों की महत्वपूर्ण बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शुक्रवार यानी आज होगी। इस बैठक में पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन, ऑस्ट्रेलियाई पीएम स्कॉट मॉरिसन और जापान के पीएम योशीहिडे शामिल होंगे। दुनिया के 4 ताकतवर लोकतांत्रिक देशों के नेताओं की अहम बैठक में कोरोना वैक्सीन, तकनीकी सहयोग, क्लाइमेट चेंज जैसे मुद्दे प्रमुख रह सकते हैं, लेकिन माना जा रहा है कि सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा चीन का हो सकता है। आपको बता दें कि कोरोना के शुरुआती दिनों में फिर महामारी के दौरान चीन के रुख की वजह से अंतर्राष्ट्रीय मुश्किलें पैदा हुई। चीन पर कोरोना की जानकारी शुरू में न मुहैया कराने जाने के आरोप लगे। इसे लेकर पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुलेआम चीन की निंदा की थी। फिर अप्रैल मई 2020 में चीन ने भारत की सीमा का अतिक्रमण करने की कोशिश की, जिस पर शुरू हुआ विवाद हाल में कुछ शांत हुआ है। दक्षिण चीन सागर में भी चीन लगातार अपनी दादागिरी दिखाता रहा है। इधर अमेरिका के प्रभावशाली सीनेटरों ने सीनेट में कई प्रस्ताव पेश कर दक्षिण चीन सागर में बढ़ती सैन्य गतिविधियों के लिए चीन की आलोचना की है। पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम में राज्य के सीएम ममता बनर्जी पर हुए तथाकथित हमले पर तृणमूल कांग्रेस ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर उसकी भूमिका पर सवाल उठाए थे। अब आयोग ने टीएमसी के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी, लेकिन यह कहना गलत होगा कि आयोग ने राज्य के कानून व्यवस्था मशीनरी पर कब्जा कर लिया है। आयोग ने कहा कि इस घटना की तत्काल जांच कराने की जरूरत है। बता दें कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर नंदीग्राम में कथित तौर पर हुए हमले से जुड़ी चिंताओं को लेकर शुक्रवार को पार्टी का एक संसदीय प्रतिनिधिमंडल दिल्ली में चुनाव आयोग के अधिकारियों से मुलाकात करने वाला है। असम विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 47 सीटों के लिए 284 उम्मीदवारों के नामांकन पत्र वैध पाए गए। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने गुरुवार को बताया कि 27 मार्च को पहले चरण के मतदान के लिए नामांकन पत्रों की जांच के बाद 284 उम्मीदवारों के नामांकन वैध पाए गए हैं। पहले चरण के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने की आखिरी तारीख 9 मार्च थी और नामांकन पत्रों की जाँच बुधवार को हुई। नाम वापस लेने के लिए आखिरी तारीख 12 मार्च है। आपको याद दिला दें कि असम विधानसभा की 126 सीटों के लिए 3 चरणों में मतदान होंगे। दूसरे चरण में 39 सीटों के लिए 1 अप्रैल और तीसरे चरण में 40 सीटों के लिए 6 अप्रैल को मतदान होंगे। ये खबरें आप न्यूज 18 हिंदी के पॉडकास्ट में सुन रहे हैं। इन्हें विस्तार से पढ़ने के लिए hindi.news18.com पर जाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को यानी आज आज़ादी का अमृत महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। वे आज अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से दांडी तक 241 मील लंबी पदयात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इस महीने की शुरुआत में केंद्र सरकार ने आज़ादी का अमृत महोत्सव के रूप में भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ मनाने के लिए कार्यक्रमों की श्रृंखला आयोजित करने का निर्णय किया था। यह कार्यक्रम 12 मार्च 2021 से शुरू होकर 15 अगस्त 2022 तक चलेगा। इसी के तहत दिल्ली की केजरीवाल सरकार भी आज कनॉट प्लेस के इनर सर्कल में यह कार्यक्रम आयोजित करने जा रही है। इस कार्यक्रम को लेकर गुरुवार को दिल्ली पुलिस ने एक एडवाइजरी जारी की है। किसी भी असुविधा से बचने के लिए यातायात पुलिस ने यात्रियों को दोपहर 2 बजे से रात 9 बजे तक कनॉट प्लेस के इनर सर्कल में यात्रा नहीं करने की अपील की है। परामर्श के मुताबिक कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क में होने वाले भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ शुरुआत कार्यक्रम में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, कैबिनेट मंत्री और विधायकों समेत करीब 800 लोग शामिल होंगे। मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा है कि किसानों की कर्ज माफी का वादा बीजेपी ने नहीं किया था, कांग्रेस ने वादा किया था तो जवाब कांग्रेस से लिया जाए। किसानों की कर्ज माफी के मुद्दे पर मध्य प्रदेश विधानसभा में बुधवार को जमकर हंगामा होने के बाद कमल पटेल ने यह बात कही। कांग्रेस विधायकों के हंगामे की वजह से सदन की कार्यवाही 10 मिनट के लिए स्थगित करनी पड़ी और विपक्षी सदस्यों ने सदन से वॉकआउट भी किया। सरकार को घेरते हुए कांग्रेस आरोप लगाती रही कि शिवराज सरकार किसानों की फसल ऋण माफी के मुद्दे पर गोलमोल जवाब दे रही है। सदन में कृषि मंत्री कमल पटेल के जवाब से असंतुष्ट कांग्रेसी विधायकों ने कहा कि सरकार यह नहीं बता रही है कि किसान कर्ज माफी योजना लागू रहेगी या नहीं। उत्तराखंड में केदारनाथ धाम के कपाट 17 मई की सुबह 5 बजे से भक्तों के लिए खोल दिए जाएंगे। वेद पाठियों और तीर्थ पुरोहितों ने पूजा पाठ के बाद शुभ मुहूर्त निकाला है। उखीमठ के ओमकारेश्वर मंदिर ने यह जानकारी दी है। केदारनाथ धाम के कपाट खोलने के लिए 13 मई को पूजा अर्चना की जाएगी। इसके बाद 14 मई को बाबा केदार की डोली फाटा में विश्राम करेगी। 15 मई को यह डोली गौरीकुंड और 16 मई को केदारनाथ धाम पहुंचेगी। 17 मई को सुबह 5 बजे भगवान केदारनाथ मंदिर के कपाट खोल दिए जाएंगे। आपको बता दें कि केदारनाथ समेत 4 धामों के कपाट हर साल अक्टूबर नवम्बर की सर्दियों में बंद कर दिए जाते हैं, जो अगले साल फिर अप्रैल मई में भक्तों के लिए खोल दिए जाते हैं। आपको याद दिला दें कि गढ़वाल हिमाचल स्थित बद्रीनाथ धाम के कपाट 18 मई से खुल जाएंगे। कपाट खोले जाने की घोषणा वसंत पंचमी के मौके पर की गई थी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर अपनी सरकार का दूसरा बजट शुक्रवार को 12 बजे पेश करेंगे। इस बार भी बजट टैब के जरिए पेश किया जाएगा। बजट सत्र 18 मार्च तक चलेगा। आने वाले बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक कल्याण प्रणालियों को और बेहतर करने की योजना दिख सकती है। कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखते हुए हरियाणा सरकार का इस साल का बजट अब तक का सबसे महत्वपूर्ण बजट है। महामारी की वजह से पैदा हुए आर्थिक संकट के समय में इस साल के बजट को अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। ये खबरें आप न्यूज 18 हिंदी के पॉडकास्ट में सुन रहे हैं। इन्हें विस्तार से पढ़ने के लिए hindi.news18.com पर जाएं। आज के पॉडकास्ट में इतना ही। नई खबरों और नए अपडेट के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अनुराग अन्वेषी को दें विदा। नमस्कार दोस्तों।